पृष्ठ संख्या 176। हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत तथा आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। 1935 का अधिनियम दास्ता का नया चार्टर है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैंने मांगी थी रोटी और मिला पत्थर, गांधी जी ने 1930 में कहा था। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये बात मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। कोई भी स्वाभिमानी भारतीय अब आँख मूंद कर सुस्त नहीं बैठा रह सकता। जो इल्बर्ट विधेयक विवाद महत्व को समझते थे, उनके लिए यह देशभक्ति की महान पुकार थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। ये लाठियों के प्रहार जो मुझ पर किए गए हैं, एक दिन ब्रिटिश शासन के कफन की कील बनकर रहेगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। क्रिप्स प्रस्ताव आउटडेटेड चेक के समान है, सरदार पटेल। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, प्रोफेसर केटी शाह। पृष्ठ संख्या 177। समाज में परिवर्तन आवश्यक है, किंतु यह परिवर्तन क्रमिक रूप से होना चाहिए। भूत और वर्तमान भविष्य का मार्गदर्शक होता है, यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। मार्च 1947 में भारत समुद्र के बीच में खड़े एक ऐसे जहाज की तरह था जिसमें आग लग गई हो, जिसके राब पर हथियार लदे पड़े हों। उस समय तत्कालिक मसाला हथियारों तक आग को पहुंचाने से पहले ही बुझा देना था। लॉर्ड माउंटबेटन के सेनापति ने इस बात को कहा था। फासिस्ट शक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र की विजय के फलस्वरूप नई विश्व परिस्थिति ने भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न को विश्व राजनीति की अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है, रजनी पामदत्त ने यह बात आज के भारत पुस्तक में कही। अतीत के फर्मूलों को वर्तमान स्थिति पर लागू करना हितकर नहीं है। 1946 का तापमान वही तापमान नहीं है जो 1920 और 1930 में या यहाँ तक कि 1942 में था। 15 मार्च 1946 को यह घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने की। भारत की सरकार और भारत पर विजय ही वस्तुतः वे उपलब्धियां हैं जिन्होंने विश्व के अभिनय में इंग्लैंड को इसका उचित स्थान दिलाया है। एशिया में उसकी स्थिति से उत्पन्न वैभव और सम्मान ही ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला है तथा प्राचीन एशियाई महाद्वीप के केंद्र स्थल पर वह उस सिंहासन पर आरूढ़ है जिसने हमेशा पूर्व पर शासन किया। उसका राजदंड पृथ्वी और समुद्र तक दूर दूर तक फैला हुआ है। ईश्वर की तरह उसके हाथ में त्रिशूल है और सम्राट की तरह उसके मस्तक पर ताज सुशोभित है, लॉर्ड कर्जन ने अपनी बुक प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट में लिखा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सारा कच्चा माल मौजूद है। यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास, पटसन, कोयला और उच्च कोटि के कच्चा लोहा आदि हैं। यहाँ सोना और चांदी का जितना जखीरा है उतना शायद ही किसी दूसरे देश में हो। देश की सीमाओं के अंदर उत्कृष्ट बाजार हैं जिसमें दूसरे लोग बड़े पैमाने पर अपने बनाए हुए सामान बेच रहे हैं। इन सारे लाभों के बावजूद 100 वर्ष बाद भी कारखाना उद्योग से अपनी आबादी के केवल 2% हिस्से को सहारा दे रहा था। DH बोस्नान ने यह टिप्पणी की। 1934 तक इन्होंने भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास का सर्वेक्षण किया था। पृष्ठ संख्या 178। यह शहर उतना ही विस्तृत, उतना ही आबादी वाला और उतना ही समृद्ध है जितना लंदन। फर्क इतना है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास लंदन की तुलना में असीम संपत्ति है। लॉर्ड क्लाइव 1757 में बंगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद को देखने के बाद यह बात लिखा था। उस हिंसा और लूट की कोई सीमा नहीं है जिसे भारत में ब्रिटिश शासन के नाम से जाना जाता है, लेनिन ने यह बात कही। प्राचीन रोमन सम्राटों का यह आदर्श वाक्य था कि फूट डालो और राज करो, यही हमारा भी आदर्श होना चाहिए। लॉर्ड एल्फिंस्टन, मुंबई का गवर्नर, 4 मई 1859 को यह वक्तव्य उसने दिया था। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि ब्रिटिश साम्राज्य अपने अधिराज का कोई दूसरा हिस्सा गंवा देता है तो भी हम जीवित रह सकते हैं, पर हमने यदि भारत को खो दिया तो हमारे साम्राज्य का सूरत अस्त हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने यह बात 1898 में कही। इंग्लैंड ने भारतीय समाज के समूचे ढांचे को तोड़ दिया है और पुनर्निर्माण के अभी तक कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का इस तरह उजड़ जाना और नई दुनिया का कहीं पता न चलना हिंदुस्तानियों के वर्तमान दुख दर्द के साथ एक खास तरह का विषाद जोड़ देता है और ब्रिटिश शासित हिंदुस्तान को उसकी समस्त प्राचीन परंपराओं तथा उसके संपूर्ण विगत इतिहास से काट देता है। कार्ल मार्क्स की युक्ति है, उनकी पुस्तक दी ब्रिटिश रूल इन इंडिया से ली गई है। न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून, 25 जून 1853 को। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की प्रगामी चेतना और जनाधार का इतिहास है जिसकी शुरुआत उदयमान बुर्जुआ और व्यवसायी वर्ग के थोड़े से लोगों ने अपने अत्यधिक सीमित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की थी और इतिहास की प्रक्रिया के दौरान जो अब कहीं आकर अपने पूर्ण स्वरूप और अपनी उपलब्धियों तक पहुंच रहा है तथा और भी दूरगामी सामाजिक मुक्ति के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। रजनी पाम दत्त ने यह बात बोली। पृष्ठ संख्या 179। ऐसे समय जबकि औद्योगिक व्यवस्था के जन्म स्थान पश्चिमी यूरोप में असभ्य जनजातियां बसी हुई थीं, भारत अपने शासकों की समृद्धि और अपने शिल्पियों की अत्यंत कलात्मक कारीगरी के लिए विख्यात था और काफी समय के बाद भी जब पश्चिम के साहसी सौदागर पहली बार भारत पहुंचे, इस देश का औद्योगिक विकास किसी भी कीमत पर अपेक्षाकृत अधिक विकसित यूरोपीय देशों से कम नहीं था। 1916-18 के समय भारतीय औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस देश की जनता को यदि राजनीतिक संकट के दौरान कोई निर्देश न दिए गए सिवाय इसके कि वे हिंसा से नफरत करे, व्यवस्था से प्यार करे और संयम का परिचय दे, तो इस देश में नागरिक स्वतंत्रताएं कभी अस्तित्व में नहीं आ सकेंगी। विलियम एवर्ट ग्लेडस्टोन। अंग्रेज नौकरशाही बहुत साफ तौर पर और तेजी से स्वार्थी होती जा रही है और राष्ट्र की आकांक्षाओं का खुलकर विरोध कर रही है, जबकि पहले यह ऐसी नहीं थी। गोपाल कृष्ण गोखले। सरकारी घोषणा के साथ सुधारों से संबंधित जो कानून पारित हुआ है उससे पता चलता है कि अंग्रेज लोग भारत के साथ न्याय करना चाहते हैं और इस बारे में अब हमारे संदेह दूर हो जाने चाहिए। महात्मा गांधी ने यह बात 31 दिसंबर 1919 को यंग इंडिया में लिखी। भारत के बारे में सर्वाधिक दिलचस्प तथ्य यह है, इसकी धरती समृद्ध है और लोग गरीब। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी इस तरह की निर्धनता से ग्रस्त है जिसकी तुलना समूचे पश्चिमी जगत के किसी भी देश से नहीं की जा सकती। यहाँ की अधिकांश जनता किसी तरह अस्तित्व बनाए हुए है। इंडिया इन 1929-30, पृष्ठ संख्या 180। यदि अहिंसा के सिद्धांत से रत्ती भर भी हटने से मुझे विजय मिल जाती तो मैं इस विजय से अपनी पराजय ज़्यादा पसंद करूँगा। अहिंसा से रत्ती भर भी हटने से संदेहपूर्ण सफलता के बदले मैं यह ज़्यादा पसंद करूँगा कि अहिंसा पर आँच न आए, भले ही मैं हार क्यों न जाऊँ। यह बात महात्मा गांधी ने कही। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस धरती पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं हो पाई जितनी कि 1765 से 1786 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह बात 12 फरवरी 1858 को हाउस ऑफ कॉमन में बयान दिया। भारतीय मजदूर वर्ग अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वह वर्ग चेतना से पूर्ण और राजनीतिक संघर्ष चला सकता है, और ऐसी स्थिति होने के कारण भारत में आंग्ल रूसी पद्धतियाँ पुरानी पड़ चुकी हैं। लेनिन ने यह बात 1908 में कही। यदि हमने समूचे भारत को जिलों में बांट दिया तो कुदरती तौर पर हमारा साम्राज्य 50 वर्ष भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन यदि हमने ऐसी रियासतों को राजनीतिक ताकत दिए बिना अपने हथियार के रूप में बनाए रखा तो जब तक हमारी नौसेना की श्रेष्ठता बनी रहेगी तब तक हम भारत में भी बने रहेंगे। यह बात लॉर्ड हेनिंग ने 30 अप्रैल 1860 को कही। यहाँ जुल्म का एहसास होता है, ऐसा माहौल है जिसमें दम घुटता है और सांस लेना भी मुश्किल लगता है। इस ठहरे हुए या धीरे धीरे बह रहे पानी के नीचे सड़न और गतिहीनता है। इसे देखकर कोई भी आदमी खुद को दिमागी और शारीरिक तौर पर कैद से घिरा हुआ महसूस करता है। जवाहरलाल नेहरू ने यह बात अपनी आत्मकथा में पृष्ठ संख्या 531 में लिखी है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह बात अरविंद घोष ने कही। प्रशासन और शोषण यहाँ भारत में साथ साथ चलते हैं, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में यह बात कही। पृष्ठ संख्या 181। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने स्वाधीनता शब्द को अंधश्रद्धा का रूप दे दिया है। भारतीय मामलों के मंत्री दी भॉर्सॉक ऑफ जेटलैंड का एक संवाददाता सम्मेलन में बयान 11 फरवरी 1940 को। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे दिन ब दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगली पंक्ति में लाती जाएगी। लॉर्ड कर्जन 23 मार्च 1905। आधुनिक इतिहास में किसी साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा किसी देश की जनता को इतने बड़े पैमाने पर अहिंसक तरीके से त्याग करते हुए नहीं देखा गया। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता सोने की तस्तरी में दिए गए इस उपहार की प्रशंसा करेंगे। यह बात लास्की ने 1946 में 23 मई को लेबर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कही। जनता पर आज भी उसी तरह शासन किया जाता है जैसे ब्रिटिश शासन में होता था, और शासन चलाने वाले व्यक्ति भी उसी प्रकार के हैं। जनगण देखते हैं कि स्थानीय मामलों तक में भी उनका कोई हाथ नहीं है, और यह कि छोटे से छोटे सरकारी नौकर भी उनके प्रति किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं हैं। इसके विपरीत वे यह पाते हैं कि वह उनके ऊपर आज भी उसी प्रकार प्रभुत्व जमाता है और घुसखोरी करता है जैसे कि वह पहले किया करता था। जयप्रकाश नारायण। हमने उनके भारत के उत्पादनों का सफाया कर दिया है। उनके पास अपनी जमीन से हुई उपज के अलावा और कुछ भी नहीं है जिन पर वे निर्भर हैं। यह बात चार्ल्स ट्रेवलियन ने 1840 में हाउस ऑफ कॉमन की प्रवर समिति को बताया था। झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, श्यामलाल पार्षद ने यह उक्ति कही थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह बात बोली, फूट डालो और शासन करो। माउंट स्टुअर्ट एलिफेस्टन, पृष्ठ संख्या 182। भारतीय अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। यह बात महात्मा गांधी ने 1922 में बोली। हमारा नारा है नष्ट करो। हम नष्ट करना क्यों चाहते हैं? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं? हम उस परिपाटी को नष्ट करना तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है। बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेसी भारत थी। ग्रेनविल ऑस्टिन। हम गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों भूमि की पैदावार खाकर जीवित हैं। हम जीवन मरण में एक दूसरे के साथ हैं। सर सैयद अहमद खान। एओ होम के बारे में कहा, वह चतुर और सज्जनवत है लेकिन कुछ सनकी लगते हैं। यह बात एओ ह्यूम के बारे में लॉर्ड डफरिन ने कही।